नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए आज पटना में राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की होगी बैठक। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होगी। विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित अंचलाधिकारी प्रिंस राज के मधुबनी, शेखपुरा और हजारीबाग स्थित ठिकानों पर छापेमारी की, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए आज पटना में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन के सभी 6 घटक दल राजद कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, वामपंथी दलों के वरिष्ठ नेता और विकासशील इंसान पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महागठबंधन की सभी 6 सहयोगी पार्टियां सीटों पर समझौते और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर सहमति को लेकर विचार मंथन करेंगी। मुख्य विपक्षी दल RJD ने लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। बैठक के दौरान महागठबंधन के सामूहिक चुनाव रणनीति और एजेंडा पर भी चर्चा होगी। हाल ही में NDA से अलग हुए पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महागठबंधन में नया सहयोगी दल के रूप में प्रवेश देने पर भी चर्चा होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कल इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया था। इससे पहले केंद्र ने पीठ द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है, तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए। विशेष निगरानी इकाई SVU ने निलंबित अंचलाधिकारी प्रिंस राज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। SVU की अलग अलग टीमों ने निलंबित अंचलाधिकारी के मधुबनी स्थित 2 आवास, शेखपुरा के अरियरी स्थित CO आवास और झारखंड के हजारीबाग सहित 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान SVU को प्रिंस राज और उनकी CO पत्नी अंकू गुप्ता के नाम पर कई मकान, फ्लैट, विभिन्न बैंकों में खाता और निवेश के साथ ही लाखों रुपए के आभूषण की जानकारी मिली है। साथ ही CO द्वारा अपनी उम्र 4 साल छिपाते हुए दोबारा मैट्रिक परीक्षा देने और उसी प्रमाण पत्र पर BPSC से चयनित होने का भी खुलासा हुआ है। कैमूर में कव्य विकास योजना में 20 लाख रुपए से अधिक की हेराफेरी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई ने वर्ष 2015 से 18 के बीच हुए इस घोटाले के मामले में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में चल रही योजनाओं में गति लाने और अंतर विभागीय समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री मीणा ने पटना में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए प्रत्येक प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल एजेंट्स के लिए कल से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन बिहार के 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 280 PLA शामिल हुए। शिक्षा विभाग ने 7,351 महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। इनमें 91 नियमित और 7,260 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण महिला शिक्षक शामिल हैं। इन सभी को विद्यालय का आवंटन 25 से 30 अप्रैल के बीच होगा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से तीसरे चरण में चयनित वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग का एक और अवसर दिया है जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है या वे अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिले में 28 अप्रैल को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 2 मई से 7 मई के बीच 2 पालियों में होगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में 19,838 पदों पर सिपाही बहाली को लेकर आवेदन की तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक ही निर्धारित थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। आज महान गीतकार, साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी गोपाल सिंह नेपाली की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन भागलपुर में वर्ष 1963 में उनका निधन हुआ था। उनका जन्म पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में 11 अगस्त 1911 को हुआ था। भारत पर चीन के आक्रमण के समय 1962 में जो ओजस्वी गीत नेपाली जी ने लिखे थे वे देश प्रेम की भावना से ओतप्रेत थे। गोपाल सिंह कई विधाओं के धनी थे और वे पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। कहा जाता है कि उत्तर छायावाद के दौर में गोपाल सिंह नेपाली एक प्रमुख हस्ताक्षर थे। एक रिपोर्ट।
वरिष्ठ पत्रकार पारस कुंज ने गोपाल सिंह नेपाली पर बहुत काम किया है। उनका कहना है कि वे किसी भी मायने में राष्ट्र कवि से कम नहीं थे। भागलपुर में उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने उमड़ पड़े थे।
इनको पहले से आभास हो गया था कि चीन कुछ गलत हरकत करने वाला है, तो ये अंतिम समय में फिल्म स्थान को छोड़ करके वो अपनी एक नई किताब थी इनकी हिमालय ने पुकारा, तो उसको लेकर के ये पूरे भारत में भ्रमण किया कि हम जो है यहाँ अपनी सेना के मनोबल को जगाऊंगा और जाकर के आम जनता के अंदर उत्साह भरूंगा और अपनी क्रांतिकारी कविताओं के माध्यम से, जैसे कि वो शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, तरह की रचनाओं का पाठ करके ये मंचों के बेताज बादशाह। बेटी की विदाई का गीत जो है, विरह का गीत, बाबुल तुम बगिया के तरबर हम तरबर की चिड़िया रे, दाना चुपके उड़ जाए हम पिया मिलन की घड़िया रे, ये जिसमें इसको जब पाठ करते थे, गाते थे मंचों पे, तो श्रोता के आंख से झरझर आंसू बहने लगता था कि जो है ये एक चारी से चले हैं काव्य पाठ करके, और ट्रेन में ही ये इनका देहांत हो गया संध्या अवस्था में। भागलपुर जंक्शन पे उनके पार्थिव शरीर को उतारा गया और सब 20 घंटे के बाद मारवाड़ी पाठशाला से राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि शोभा यात्रा निकली, सब यात्रा निकली, और उसमें उस वक्त के बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, हजारों की तादाद में आम जनता, पूरा शहर बंद हो चुका था जिस रास्ते से इनका पार्थिव शरीर जा रहा था, छत पर से जो है औरतें, बच्चे, फूल मालाएं, नेपाली अमर है नेपाली अमर रहे करके इनका स्वागत कर रहे थे, और हर आंख नम था। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रकवि बनने लायक थे उनको आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। फिल्मों में उन्होंने गीत लिखा, लेकिन उन्होंने हिंदी को स्थापित किया फिल्मों में जाकर के, लेकिन वो अपने साहित्य का स्तर नहीं गिराए। फिल्मों में जो गीत लिखा उसके लिए उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिले। उनके नाम पे भागलपुर से हम लोगों ने मांगा है एक ट्रेन बेतिया तक चले। बेतिया का जन्म स्थान था, भागलपुर का निर्माण स्थान था।
गोपाल सिंह नेपाली कई पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे और उन्होंने मुंबई में फिल्मों के लिए कई गीत भी लिखे। आकाशवाणी ने उनके कई देश गान का प्रसारण किया जो काफी लोकप्रिय हैं। आज के समय में जब राष्ट्र प्रथम की भावना पर जोर दिया जाता है तो गोपाल सिंह नेपाली की ओजस्वी अपील, उनके गीत, साहित्य और रचनाएं हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी।
तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो।
धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मौसम विभाग ने आज किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
17 अप्रैल 2025 को राज्य के अधिकांश जिलों के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज और अररिया जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
राज्य में पहली बार 14 पुराने पेड़ विरासत वृक्ष घोषित होंगे। ये वृक्ष 70 से 250 वर्ष पुराने हैं। विशेषज्ञों ने इनकी जांच पूरी कर ली है। बिहार जैव विविधता परिषद के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वृक्ष राज्य के 4 जिलों जमुई, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर में अलग अलग जगहों के हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के रामपुरमणि गांव के पासवान टोला में अगलगी की घटना में 4 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली पोल के डीबी बॉक्स में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से लगी आग की लपेट में 65 घर आ गए। आग लगने के कारण कई घरों में रसोई गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना वन प्रमंडल की टीम ने बैरिया बस स्टैंड में छापामारी कर भारी मात्रा में पैराकीट और मुनिया प्रजाति की प्रतिबंधित 863 पक्षियों को बरामद किया है। मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। आरा जीआरपी ने फरक्का एक्सप्रेस की एक बोगी से 20 लाख रुपए मूल्य के कछुए के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है हिंदू धार्मिक न्यासों में क्या मुस्लिम हिस्सा होंगे। प्रभात खबर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया अंतरिम आदेश, केंद्र से मांगा जवाब। दैनिक जागरण ने लिखा है जनता के बीच अपनी ठोस उपलब्धियों के दस्तावेज के साथ जाएगा एनडीए, मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में रिपोर्ट कार्ड के मसौदे पर विचार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है सुपौल के निलंबित सीओ प्रिंस राज की संपत्ति आय से 93% अधिक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है 35 एफटीसी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श के लिए आज पटना में राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की होगी बैठक। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई होगी। विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित अंचलाधिकारी प्रिंस राज के मधुबनी, शेखपुरा और हजारीबाग स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।